أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. قرآن کریم کے تیسویں اور آخری جز میں ہم نے سورۃ التکاثر تک گزشتہ درس میں تمام کیا تھا. آج کے درس کا آغاز ہم سورۃ العصر سے کر رہے ہیں. پہلے تلاوت اور اس کے بعد مختصر اس کی وضاحت ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر کا ترجمہ اور مختصر وضاحت. بنام خدا رحمان رحیم. آیت نمبر ایک. والعصر قسم ہے زمانے کی. دو. ان الانسان لفی خسر یقیناً انسان خسارے میں ہے. سب سے پہلے عصر کا معنی دو طرح سے کیا گیا ہے. بعض نے اس سے نماز عصر کا وقت مراد لیا ہے اور اس کی مناسبت یہ بیان کی ہے کہ جو نماز عصر کا وقت ہوتا تھا جس زمانے میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اس زمانے میں عام طور پر دکاندار حضرات، تاجر حضرات اپنی اپنی دکانوں کو بند کر رہے ہوتے تھے اور حساب کتاب کر رہے ہوتے تھے، اور اس کی وجہ سے عصر کی جو نماز ہے اس کے بارے میں مثال کے طور پر غفلت کا شکار ہو جاتے تھے اپنے دنیاوی کاروبار کے حساب و کتاب کو کرتے ہوئے. اور لہذا یہ سورہ نازل ہوئی کہ یہ عصر کا وقت، اس وقت جو تم عمل کر رہے ہوتے ہو اور نماز کو چھوڑ کر تم اپنی دنیا کے حساب کتاب میں لگے ہوتے ہو، یہ گواہی دے رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے. یعنی وہ جو دنیا کے پیچھے دوڑ کر دنیا کے امور کو ترجیح دے کر اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کی نماز سے غافل ہو گئے ہیں، یہ لوگ خسارے میں ہیں. تو بعض نے یہ مناسبت بیان کی اور بعض نے یہ بیان کیا کہ عصر سے مراد وقت نماز عصر نہیں ہے بلکہ عصر سے مراد زمانہ ہے. یعنی جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اس وقت سے لے کر تا قیامت، ہر اس انسان کے لیے کہ جس وقت بھی وہ اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، اگر وہ انسانیت کی تاریخ پر، گزشتہ زمانوں پر، موجودہ زمانے پر نگاہ ڈالے تو یہ زمانہ، یہ تاریخ انسانیت اسے اسی بات کی گواہی دے گی کہ جو اللہ تبارک و تعالی اگلی دو آیات میں ارشاد فرما رہا ہے. بس والعصر یعنی قسم ہے زمانے کی. کیا مطلب؟ یعنی زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہی دے رہا ہے. انسانیت کی تاریخ، گزشتہ قوموں کو دیکھ لو، گزشتہ افراد کو دیکھ لو، اپنے آبا و اجداد کو دیکھ لو، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو جو موجود ہیں، جو گزر چکے اس دنیا سے، انسانیت کی تاریخ دیکھ لو، قوموں کی تاریخ دیکھ لو، تمہیں یہی گواہی ملے گی. یہ زمانہ کیا گواہی دیتا ہوا تمہیں ملے گا؟ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے. خسر، خسارہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نقص، جس سے لفظ نقصان ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. نقص یا نقصان کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز میں کچھ کمی ہو جانا. مثال کے طور پر میرے پاس 100 روپے کی رقم تھی، کسی وجہ سے 90 روپے میرے پاس رہ جائیں تو مجھے نقصان ہو جائے گا. خاص طور پہ اگر مثلا میں کچھ رقم لے کر، کوئی شخص کوئی رقم لے کر تجارت کے لیے نکلا اور جب وہ واپس آیا تو جو رقم گھر سے لے کر نکلا تھا اس سے بھی کم تھی اس کے پاس، اسے کہتے ہیں نقصان. या बाज़ औक़ात ताजर लोगों को जब जितना उनका अंदाज़ा है उतना मुनाफा ना हो तब भी वो कहते हैं नुकसान हो गया। तो नुकसान कहते हैं कुछ कमी हो जाने को, और खुसर या खुसरान या जिसे हम उर्दू में खसारा कहते हैं, अलबत्ता अरबी वाला माना हमारे मोरद नज़र है, वो ये है खुसर यानी जो कुछ था वो भी गंवा बैठना, जो कुछ जो सरमाया जो कैपिटल किसी के पास था वो भी सारा ज़ाया कर बैठे। तो कुरान मजीद की ये मुख्तसर लेकिन बहुत ही बड़ा पैगाम देने वाली सूरह मुबारका क्या पैगाम दे रही है कि तुम अगर सारी इंसानियत की तारीख पर निगाह डालो, जमाने पर निगाह डालो, तो वो तुम्हें गवाही देता हुआ मिलेगा कि इंसान खुसर में है, खसारे में है, यानी इंसान अपना बेहतरीन सरमाया ज़ाया कर रहे हैं सिवाय ईमान वालों के। जैसे कि अगली आयत में बात वाज़े हो जाएगी मज़ीद। नुकसान में कौन है? जो ईमान ना लाए अल्लाह के पैगाम पर, अल्लाह के रसूल पर, और उस ईमान का जो तकाज़ा है अमल सालेह वो ना करे, और फिर अमल सालेह करने के लिए सिराते मुस्तकीम पर जब इंसान चलता है तो मुसीबतें आती हैं, मुश्किलात आती हैं। अब ये जो मोमिनों का ग्रोह है ये इन मुश्किलात से जब दोचार होता है तो एक दूसरे को तलकीन करते रहते हैं, ताकीद करते रहते हैं कि हक को नहीं छोड़ना और मुश्किलात के मुकाबले में सब्र करना है। एक दूसरे के साथी होते हैं, एक दूसरे के खैर ख्वाह होते हैं, एक दूसरे को भलाई की दावत देते हैं, एक दूसरे को बुराई से मना करते हैं। इस ग्रोह के अलावा बाकी तमाम इंसानियत, बाकी तमाम इंसान, उनकी हालत क्या है? जो सरमाया अल्लाह ने उन्हें दिया था, जिंदगी दी थी, जिस्म दिया था, सलाहियतें दी थी, अक्ल दी थी, आंखें दी थी, कान दिए थे, जुबान दी थी, सब कुछ अता किया था, ये सरमाया था, ये हमने खुद हासिल नहीं किया था, ये किसी ने दिया था हमें, कि इस सरमाए को इस्तेमाल करो, और अगर सही इस्तेमाल करोगे मेरी जो जो ये सरमाया देने वाला तुम्हारी ज़िंदगी के लिए जो प्लान तुम्हें दे रहा है, जो शरीयत तुम्हें दे रहा है, अगर इसके मुताबिक चलोगे और इन चीज़ों को, ये जो सरमाया तुम्हें दिया है, जो नेमतें तुम्हें दी हैं, जो रिज़्क़ हलाल मसलन तुम्हें दिया है, उसको इस तरह इस्तेमाल करो कि दुनिया भी तुम्हारी बाइज्जत और अच्छी गुजरे और आखिरत भी तुम्हारी बेहतरीन हो जाएगी, अबदी अजर अता करूंगा। लेकिन जिन लोगों ने अल्लाह के इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, कहीं और से जिंदगी का प्लान लिया, कहीं और से अकदार जिंदगी हासिल की, कहीं और से तसव्वुर कायनात लिया, कहीं और से तसव्वुर जिंदगी लिया, तो खसारे में पड़ गए। क्यों? हर गुजरने वाला लम्हा जिंदगी के सरमाए को कम कर रहा है। हर सालगिरह का जश्न, हर बर्थडे पार्टी, लोग तो उस पर खुश हो रहे होते हैं, बाज़ लोग क्लैपिंग्स कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, लेकिन वो बर्थडे बता रही होती है कि जितना मोहलत तुम लेकर आए थे एक साल कम हो चुका है। और जो आकिल होता है उसको जब ये सिग्नल मिलता है कि तेरे तेरे खेलने का टाइम, तेरी गेम का टाइम अब कम रह गया है, तो वो तो और होशियार हो जाता है और ज़्यादा। आपने देखा होगा आखिरी मिनट्स में अगर दो टीम्स में मैच हो रहा हो, मसलन फुटबॉल मैच हो रहा हो, और वो मिसाल के तौर पर दोनों के या वो बराबर हो, और या ये कि एक टीम एक गोल से आगे हो, तो दोनों टीमें उन आखिरी टाइम उस आखिरी आखिरी मिनट्स में, जैसे जैसे एंड का टाइम, मैच के एंड का टाइम नज़दीक आता है, इख्तिताम का टाइम नज़दीक आता है, तो दोनों तरफ के खिलाड़ी पूरा जोर लगा देते हैं कि इस आखिरी टाइम से अपने हक में इस्तफादा कर लें। तो हर गुजरने वाला साल, हर सालगिरह का जश्न हमसे क्या कह रहा होता है? हमसे कह रहा होता है कि गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। ये जो घड़ी सिग्नल देती है ये कह रही होती है कि तुम्हारा टाइम कम हो गया है और ज़मीन तुम पर तंग होती जा रही है, वक्त जितना लेकर आए थे, जितना अल्लाह ने तुम्हारा इस दुनिया में रहने का वक्त रखा था, कम हो गया है, भाग दौड़ कर लो। फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में सबकत ले जाओ ताकि खसारे से बच सको। खसारा क्या है? इंसान मर जाए, ना आँख उस तरह इस्तेमाल हुई जिस तरह खुदा ने चाहा था, ना कान इस्तेमाल हुआ, ना ज़ुबान इस्तेमाल हुई, ना जो अल्लाह ने रिज्क इन 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 हाथों से, इन इस अक्ल से अल्लाह की दी हुई इन चीज़ों को इस्तेमाल करके जो कुछ कमाया था उसे भी खुदा के रास्ते में इस्तेमाल ना किया। तो अब जब मरा तो सब कुछ चला गया, सरमाया ज़ाया हो गया, नेमतें ज़ाया हो गई। इस माना की तरफ ये आयत इशारा फरमा रही है और अल्लाह इंसानियत की सारी तारीख को इस पर गवाह बना रहा है। अगर हम असर का माना वसी ले लें, बस कसम है जमाने की, यानी जमाना गवाह है, इन्नल इंसान लफी खुसर, यकीनन इंसान खसारे में, यानी सब कुछ जाया कर रहा है, अपना सारा सरमाया अपना जाया कर रहा है, अल्लाह से कट कर, अल्लाह के बताए हुए कानून से हट कर, नाफरमानी करके जाया कर रहा है अपने आप को। कौन इस जाया करने और जाया होने वाले ग्रोह में शामिल नहीं है? आयत नंबर 3, इल्लल्लज़ीना आमनु, सिवाय उनके जो ईमान लाए। ईमान क्या है? दिल के अंदर से तस्लीम कर लेना, दिल से मान लेना, दिल से कबूल कर लेना। और जो रिवायात अहले बैत अतहार सलामुल्लाह अलैहिम में आया है उसके मुताबिक क्या है कि ईमान 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, ज़ुबान से दिल से मान लेना और ज़ुबान से इकरार करना, यानी जो ज़ुबान कह रही है इकरार कर रही है दिल में वही है, और जो दिल में है ज़ुबान से भी उसका इकरार कर रहा है, और तीसरी चीज़ अमल करना। और कुरान ने क्या कहा? इल्लल्लज़ीन आमनु, सिवाय उन लोगों के, यानी खसारे में कौन लोग नहीं है? वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलु सालिहात, और अमल किए, कौन से अमल? अमल सालिह, व अमिलु सालिहात। और फिर जब ये ईमान ला चुके और अमल सालेह के रास्ते पर, जिस तरह अल्लाह ने बयान किया था अमल सालेह, उस दीन की तहरीक में शामिल हो गए, अपनी जिम्मेदारियां अदा करने लगे, तो फिर देखा कि मुश्किलात का सामना है। आप अल्लाह के नेक, वाकयन दीन फहम, एक वो नेक होता है जो रहबानियत टाइप का दीन अपना के बैठा होता, यानी उसके दीन का उसकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता, बड़े वजीफे करता है, बड़े वर्द करता है, बहुत नवाफिल पढ़ता है, लेकिन मुआशरे के साथ उसके दीन का कोई ताल्लुक नहीं, उसका इनफरादी दीन है। ये तहरीफ शुदा बड़ा ख़तरनाक दीन है। ऐसे लोग न सिर्फ ये कि मुआशरे में अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते, बल्कि अक्सर औकात उन लोगों के ख़िलाफ़ उठ कर खड़े हो जाते हैं और अपनी मुकद्दस मआब शख्सियात को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं जो मुआशरे में अल्लाह की तरफ से दी गई जिम्मेदारी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए उठ खड़े होते हैं। ये लोग अक्सर उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो जाते हैं, और चूंकि अपनी इबादत की वजह से, अपने वज़ायफ़ व फ़लान की वजह से बड़े मुकद्दस मआब होते हैं, तो लोग इनकी बातें फिर सुनते भी हैं, मुतदय्यिनीन के दरमियान तफरके का बायस बन जाते हैं। निशानी क्या इनको पहचानने की? कि वैसे बड़ा नमाजी है, बड़ा परहेजगार बना हुआ है, बड़े विर्द वजीफे करता है, हर वक्त जिक्र की हालत में होता है, ज़ुबान चल रही होती है, लेकिन इज्तमाई मामलात से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, कुरान मजीद के बताए हुए दीन, मुकम्मल दीन से इसका ताल्लुक नहीं होता। अपनी मर्जी के जो इसको सूटेबल लगते हैं आमाल, वो लेकर बड़े आराम से, यानी अलग थलग ज़िंदगी ये शख्स گزار رہا ہوتا ہے. تو یہ ان کی بات نہیں ہو رہی, یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے جو مرد میدان ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں. خود یہ آیت بتا رہی ہے, یہ جو اگلا آخری دو ہے نا, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ خود بتا رہا ہے کہ ان کی زندگی میں مشکلات آتی, اور پورا قرآن بھرا پڑا ان کے بارے میں. اور جو میدان سے بھاگنے والے ہیں, ڈٹنے والے نہیں ہیں, ان کی مذمت سے قرآن بھرا پڑا. وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور نصیحت کرتے ہیں, یعنی ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں. کب یہ ضرورت پڑتی ہے کہ حق کو مان لیا, دین کو مان لیا, اب جو دین کی تعلیمات ہیں, گویا دین کی سربلندی کی تحریک کا ایک مجاہد بن گیا, ایک سپاہی بن گیا, دین کے اہداف, دین کی اقدار کی سربلندی کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اب معاشرہ مخالفت کرتا ہے, دوست مذاق اڑاتے ہیں, رشتہ دار الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, معاشرے میں ایک گویا کہ لوگ اسے قبول نہیں کر رہے, چونکہ معاشرہ تو دنیا پرستی میں لگا ہوا. اب یہاں پہ ضرورت پیش آتی ہے اسے سہارے کی, اور وہ بہترین اللہ اور رسول اور اہل بیت اطہار کے بعد وہ سہارا کیا ہے, اس کے مومن بھائی, ایک دوسرے کے شانہ بشانہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے. گویا مرد میدان ہیں, مجاہد ہیں, جو میدان میں کھڑے ہوئے اور میدان کی سختیوں کو دیکھ کر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے, حق کی تاکید کرتے. کیا مطلب؟ یعنی کہتے ہیں حق کو نہیں چھوڑنا, یہ مشکلات عارضی ہیں, اور مشکلات کے مقابلے میں کیا کرنا ہے. وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت یعنی نصیحت کرتے. یہ جو مرنے والے کے لیے لفظ وصیت استعمال ہوتا ہے, یہ ایک خاص استعمال ہے, ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے لیے وصیت کا لفظ استعمال کیا ہے, حالانکہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اس سے کہ اسے موت نامی, فنا نامی کوئی چیز آئے. مثلا اللہ تعالی فرماتا ہے, یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہارے اولاد کے بارے میں. کیا مطلب؟ اللہ تعالی نعوذ باللہ کوئی جانے والا ہے کہیں؟ ایسا نہیں. بس وصیت کا معنی وہی تقریباً نصیحت والا ہے, لیکن ایک خاص استعمال مرنے والے کی نصیحت کے بارے میں, جب اس کا ایک خاص استعمال بن گیا, ایک اصطلاح بن گئی, جس کو وصیت کہا جاتا ہے, ورنہ وصیت کا معنی وہی نصیحت تاکید کا ہے. بس ایک دوسرے کو حق کی نصیحت تاکید کرتے ہیں, تلقین کرتے رہتے ہیں, اور صبر کی تاکید اور نصیحت اور تلقین کرتے رہتے ہیں, چونکہ یہ ضروری ہوتا ہے. مشکلات شدید ہوتی ہیں ان کے راستے میں, تو ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ گروہ ہے کہ جو خسارے میں نہیں ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, زمانہ گواہی دے رہا ہے, تاریخ انسانیت گواہی دے رہی ہے کہ ان کے علاوہ, مومنوں اور عمل صالح کرنے والوں کے علاوہ, انسان سب کے سب اپنا اصل سرمایہ بھی خراب کر کے دنیا سے چلے گئے, اصل سرمایہ بھی ضائع کر کے دنیا سے چلے گئے. سورۃ العصر کے بعد سورۃ الہمزہ, پہلے ہم اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سورہ ہمزہ کا ترجمہ اور مختصر وضاحت. بنام خدا رحمان رحیم, آیت نمبر ایک, ویل لکل ہمزۃ لمزہ, ہلاکت ہے, حسرت ہے, بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ऐब तलाश करता है और ताने देता है। लफ्ज़े वैल, इसके अंदर दो माना पोशीदा है। जब अरबी ज़ुबान में एक शख्स दूसरे के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है और उसे कहता है वैलुल्लका, तेरे लिए वैल है, तो इस वैल के अंदर कौन से दो मैसेज छुपे होते हैं? एक ये कि जो तू काम कर रहा है इसके नतीजे में हलाकत और बर्बादी है, और दूसरा माना ये छुपा होता है कि हसरत है कि तू काम ये क्यों कर रहा है। यानी गोया कि ये उसको खबरदार भी कर रहा होता है और उसको रोक रहा भी होता है। यानी कह रहा होता है मुझे हसरत है कि तू ये काम कर रहा है, तुझे नहीं करना चाहिए, रुक जा इस काम से। तो ये पैगाम शामिल होते हैं किसके माना में, लफ्ज़े वैल के माना में। हुमज़ा और लुमज़ा, ये दोनों अल्फाज इतने माना के एतबार से करीब हैं उलमाए लुगत की नज़र में कि बाज़ ने कहा कि दोनों एक ही माना में है और बाज़ ने इनका फ़र्क बयान करने की कोशिश की है। एक फ़र्क मिसाल के तौर पे आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं कि बाज़ ने यह फरमाया कि हुमज़ा का फ़र्क लुमज़ा से ये है कि हुमज़ा वो है कि जो पुश्त, किसी की पुश्त पीछे बुराई करता है, ऐब गोई करता है, और लुमज़ा वो है जो मुंह पर ताने देता है और मुंह पर ऐब तराशी करता है। ये दोनों बुरी बातें। रिवायात अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में जो बात आई है, मसलन एक रिवायत जो नकल की जाती है वो ये है कि जिसने अपने भाई को लोगों के दरमियान नसीहत की उसने उसे रुसवा किया। गौर फरमाइए इस नसीहत से क्या मुराद, नसीहत किस बात पे होती है कि भाई तुम ये गलत काम कर रहे हो, ये मेरे भाई आप ये काम ना करें। यही काम एक दफ़ा लोगों के दरमियान महफिल में सबको पता चल रहा है किया जाए और एक दफ़ा तन्हाई में किया जाए। जब महफिल में किया जाता है जिसको नहीं भी पता उसको पता लग जाता है कि इसमें ये खराबी है, ये काम ना करो। तो फरमाया जिसने अपने भाई को महफिल में लोगों के दरमियान नसीहत की उसने उसे रुसवा कर दिया, और जिसने अपने भाई को तन्हाई में, जिसने अपने भाई को तन्हाई में नसीहत की उसने उसे आरास्ता कर दिया, जीनत बख्शी, मुजयन कर दिया। क्या मतलब कि वो जो ऐब था अब वो दूर करेगा। अगर लोगों में ऐब बयान करता शायद वो जिद में आ जाता क्योंकि उसकी इंसल्ट होती, वो अपनी बेइज्जती का एहसास करता तो जिद में आ जाता। ये मिजाज है किसका, मोमिनीन का, जो अल्लाह ने बताया, अहले बैत अतहार ने बताया, रसूलुल्लाह ने बताया। तवज्जो फरमा रहे। लेकिन इसके बरक्स मिजाज कौन सा है, हुमज़तुन हुमज़तिन लुमज़ा। ताना दो सिफात हैं, ये ऐब गोई करना और ताने देना। ऐब गोई आमतौर पर पसे पुश्त होती है और ताना देना आमतौर पर मुंह पे होता है। दोनों गलत काम है। ये दो काम करने वाले यानी ऐब गोई, जाहिर बात है जिसने ऐब गोई करनी है, ऐब बताने हैं, उससे पहले उसमें एक और सिफत होनी चाहिए और वो है ऐब तलाश करने की। बाज़ मर्दों में बाज़ औरतों में ये बीमारी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से होती है। उनके गोया पेट में दर्द शुरू हो जाता है अगर उन्हें दूसरे के घर की रिपोर्ट ना मिले तो। लज्जत महसूस करते हैं और रिपोर्ट फिर लेते हैं, खबरें लेते हैं, ढूंढते हैं, तो में रहते हैं। जबकि कुरान ने क्या फरमाया, वला तजस्सुसु, तजस्सुस न करो। तजस्सुस क्या होता है, यही होता है तो में रहना कि इसके घर में क्या लड़ाई हुई है, इसके साथ आज इसकी शक्ल क्यों बनी हुई है फलान। एक दफ़ा है किसी की शक्ल बनी देखना और दर्द महसूस करना कि मेरे भाई के साथ कोई मुश्किल पेश आ गई है तो मैं उसका साथी बनूं। एक दफ़ा है मज़ा लेना कि कोई उससे इख्तलाफ है, कोई पुरानी उससे कोई चपकलिश है, कोई नाराज़गी है, अब उसने देखा कि ہر روز تو ہنستا ہوا آتا تھا، آج ذرا پریشان ہے، دل میں خوش ہوتا ہے، یہ مومن کی علامت نہیں ہے، یہ اور کچھ نہیں تو ایمان کے ناقص ہونے کی علامت ہے۔ دوسروں کی دکھوں پر لذت کا احساس کرنا اور پھر اپنے یاروں دوستوں میں بیٹھ کے کہنا کہ آج کل لگتا ہے کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، مزہ آ رہا ہے اس کو، تو یہ بے ایمانوں کے منہ سے نکلنے والے جملے ہوتے ہیں۔ اللہ نے صفات بتائی ہوئی ہیں، اور میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ اس میں مسلک کا فرق نہیں ہے، یہ مسلک شیطانی مسلک ہے، اصل مسلک، اصل فرقہ شیطانی فرقہ ہوتا ہے، اوپر سے لیبل چاہے شیعہ مسلک ہو، چاہے بریلوی مسلک ہو، چاہے دیوبندی مسلک ہو، چاہے کوئی بھی نام رکھا ہو، اندر سے شیطانی مسلک اگر پہچاننا ہے آپ نے، قرآن مجید نے صفات بتائی ہیں۔ ابلیس کے مسلک اہل ہم مسلک اور ابلیس نے جو فرقہ بنایا ہوا ہے اس پر چلنے والوں کی صفات اللہ نے قرآن میں بڑی واضح طور پر بتائی ہوتی ہیں۔ اوپر بے شک لکھ لے میڈ ان چائنا یا میڈ ان جاپان یا میڈ ان فلان، فرق نہیں پڑتا، اصل جو شخصیت ہے وہ میڈ بائی شیطان ہوتی ہے۔ تو وہ صفات قرآن مجید بتاتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے، ویل لکل ہمزۃ اللمزہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، کس کی نظروں میں؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ کس صفات والے کے لیے؟ لکل ہمزۃ اللمزہ، ہر طعنہ دینے والے، عیب گوئی کرنے والے کے لیے۔ آیت نمبر دو، آیت نمبر دو میں اس طبقے کا ذکر کیا گیا ہے جن میں یہ پہلی آیت والا مرض زیادہ ہوتا ہے، اور وہ کون ہے؟ مالدار لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مالدار ہیں، ہمارے میں عیب ہی کوئی نہیں، اور غریب ان کو عیب والے نظر آتے ہیں، اپنے کپڑوں کی وجہ سے، اپنے ہو سکتا ہے زیادہ ان کے پاس چونکہ اس طرح کی کریمیں اویلیبل نہیں ہوتی، اس طرح کے بیوٹیشن اویلیبل نہیں ہوتے، اس طرح کا سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں سرد ماحول غریبوں کو اویلیبل نہیں ہوتا، تو ان کی چہرے کی رنگت عمرا کی رنگت سے فرق ہوتی ہے، تو یہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں، ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کا تو کسی سے تکلف نہیں ہے، اللہ تعالی نے فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، کون ہے یہ ہمزۃ اللمزہ، تانے دینے والا اور عیب گوئی کرنے والا، جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے، بڑا شوقین ہے کس کا؟ ایک تو مال جمع کرنے کا، اور پھر اسے گن گن کے خوش ہونا۔ قرآن کی آیات آئینہ ہے، میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میرے پاس جب مال آتا ہے، ایک تو یہ کہ مجھے مال جمع کرنے کا شوق ہے، کس لیے شوق ہے؟ گن گن کے خوش ہوتا ہوں، میرے پاس اب اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا۔ جس کی یہ صفت ہے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ خالق نفسیات ہے، وہ پہلی والی صفت بھی اس کے اندر آ جائے گی۔ کیوں؟ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی اس کی نظروں میں بڑا عیب دار ہے، گھٹیا ہے، بے وقوف ہے، ٹیلنٹ نہیں ہے اس میں، انٹیلیجنٹ نہیں ہے، اس لیے کہ مال نہیں ہے۔ مال کا معیار بڑا خطرناک معیار ہے، جن کا معیار مال تھا، سورہ زخرف میں پہلے قرآن مجید میں گزر چکا، مکے والے اور اس علاقے کے لوگ جن کا معیار صرف مال تھا، انہوں نے مال نہ ہونے کی وجہ سے کہا کہ آپ رسول نہیں ہو سکتے، رسول پاک سے کہا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مالدار آدمی کا ہی رائٹ بنتا ہے اس کے پاس ساری چیزیں ہوں، حتیٰ کہ رسالت بھی۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کسی عظیم شخص پر، عظیم یعنی پیسے میں عظیم، چاہے ویسے گھٹیا ترین انسان ہو پیسے میں عظیم ہونا چاہیے، کسی عظیم آدمی پر، ان دو قریتین مکہ اور طائف مراد ہیں، ان دو قریوں میں کسی عظیم شخص پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ رسول اللہ عظیم نہیں ہے، اگرچہ صادق ہیں، اگرچہ امین ہیں، اگرچہ ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتے ہیں، اگرچہ پاکیزہ ترین زندگی گزاری ہے، لیکن عظیم نہیں ہے۔ عظیم کون ہے؟ جس کے پاس مال ہے۔ تو یہ جو مال پرست ہے اور مال کے معیار سے پرکھتا ہے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ اس کو کیا خوشخبری دے رہا ہے؟ وَيْلٌ، تیرے لیے ہلاکت ہے۔ सिफत तेरे अंदर क्या आ जाएगी, ओ मजा तिल लो मजा, तू ताने भी देगा। अकड़ ताने देने वाला एक किस्म का मुतकब्बिर भी होता है, तभी तो ताना देता है अकड़ के। आजजी और इनकसारी वाला, खुदा से डरने वाला ताने देगा, उसकी जुबान ताने देगी लोगों को, ऐब बताएगा लोगों की, ऐब की टो में रहेगा नहीं। लेकिन ये मालदार, अभी सूरह अलक चंद दिन पहले गुजरी, आपने सुनी वहां पे क्या फरमाया था, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा अर्राहु इस्तगना, के खबरदार इंसान तुगयान करता है, सरकशी करता है, कब, सबब क्या होता है, अर्राहु इस्तगना, जब अपने आप को बेनियाज देखता है। बेनियाज देखता है क्या मतलब, माल ज्यादा आ जाता है, समझता है मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, जो मैं करना चाहूँ माल से कर सकता हूँ, अपने ऐब भी छुप जाते हैं उसकी निगाहों से, और दूसरों के ऐब उसको ज्यादा, खास तौर पे जिनके पास माल कम है उनके ऐब ज्यादा दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो ये दो सिफात को अल्लाह ने आपस में मरबूत किया है, कनेक्ट किया है। ताने देने वाले के लिए हलाकत है, ऐब गोई करने वाले के लिए हलाकत है। कौन है ये, जो माल जमा करता है खुश होता है। हो सकता है बहुत बड़ा सेठ ना भी हो सकता है कोई बहुत बड़ा अरबपति करोड़पति ना भी हो, छोटा सा दुकानदार हो, लेकिन सिफत यही है, माल जमा करता है खुश होता है, मेरा माल अब ज्यादा हो गया, अब फलान हो गया, अब ये हो गया, वो हो गया। माल की मोहब्बत में, माल के तनाजुर में हर चीज को देखता है, उसके अंदर ये सिफात भी पैदा हो जाती। तीन, यहसबु अन्नमालहु अखलदा, समझता है, गुमान करता है, हिसाब उसने यूं हिसाब कर लिया है कि उसका माल उसे हमेशा बाकी रखेगा। यानी ये जो हालत है, माल उसके पास ज्यादा है, जो उसका दिल चाहता है कर लेता है, जो चाहता है खरीद लेता है, कहीं फंस जाता है रिश्वत दे के निकल जाता है, तो समझता है कि हमेशा यही रहेगा। अगर तवज्जो ना करें, खबरदार ना हो, तो हम में से बहुत सारे यूं ही होते हैं। अपनी मौजूदा जिंदगी अगर खास तौर पर वो आराम और आसाइश और माल वाली हो, तो नहीं सोचते कि ये जा भी सकती है। हमने कई लोगों को देखा, उनके बारे में सुना, एक जमाने में बड़े मालदार थे, बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ, बड़े बड़े कारोबारियों के साथ, बड़े बड़े सियासतदानों के साथ उनका उठना बैठना था, बड़ी बड़ी ऊंची महफिलें थी, फिर अचानक कारोबार में नुकसान हुआ, सारे पंछी उड़ गए, सारे दोस्त छोड़ के चले गए। ऐसा होता है, जो खबरदार है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है और होना ही होना है, मौत की शक्ल में, दुनिया में नुकसान ना भी हो, मौत की शक्ल में होना ही होना है, वो खबरदार रहता है, अपने आप को कंट्रोल में रखता है, जिसके पास जाना है उसको नाराज नहीं करता, वो हो मजा तिल लो मजा नहीं होता, ताने देने वाला, ऐब गोई करने वाला नहीं होता, वो माल जमा कर करके खुश होने वाला, मेरे पास इतना ज्यादा हो गया, क्यों खुश हो रहे हो, चले जाना है तुम्हारे पास। हाँ, अल्लाह का शुक्र करो अगर माल को अपनी जरूरियात के साथ साथ फिर उसके बाद अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो, फिर और बात है, वो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन ये उसकी बात हो रही है जो सिर्फ माल की मोहब्बत में अपने आप को क्या से क्या समझता है। यहसबु अन्नमालहु अखलदा, ये गुमान करता है, इसने ये हिसाब कर लिया है, ये समझ बैठा है कि इसका माल इसे हमेशा बाकी रखेगा। कल्ला, आयत नंबर 4, कल्ला, हरगिज नहीं, गलत समझ बैठा। थोड़ा सा गौर भी करे तो उसे पता है कि गलत समझ बैठा है, मरना है तूने, तू खुदा को भी ना मान तब भी तू मौत का इनकार नहीं कर सकता, मरना है तुझे। लेकिन ये माल का नशा, नशा जब इंसान को हो जाता है फिर उसको सारी बातें थोड़ी समझ आती, वो फिर नशा ही उसको दिखा रहा होता है जो कुछ दिखा रहा होता है, नॉर्मल अकल नहीं दिखा रही होती। तो माल का नशा खतरनाक तरीन नशा है, आप दुनिया में देख सकते हैं मालदार क्या क्या हरकतें करते हैं बाजू का। 4, कल्ला, हरगिज नहीं, लयुंबदन्ना फिल हुतमा, वो चिकनाचूर कर देने वाली आग में जरूर फेंका जाएगा। एक लफ्ज है लयुंबदन्ना, ये बना है नबदा से, नून बे और दाल, इसका माना सुन ले, फेंकने के माना में, लेकिन हर फेंकना नबदा नहीं कहलाता। अरबी जुबान में नबदा का लफ्ज कब इस्तेमाल होता है, जब आप किसी चीज को गैर अहम अनइम्पॉर्टेंट समझकर फेंक देते, तब ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तू तो दुनिया में बड़ा इम्पोर्टेंट था, बड़ा सदरे महफिल बनता था, बड़े तेरे आगे पीछे लोग चला करते थे, लेकिन ये जो हरकतें तूने सिफात अपने अंदर बना ली थी और जो हरकतें तूने की थी, तुझे इस तरह जहन्नम में फेंका जाएगा जैसे तू कोई अहम चीज़ ही नहीं है। मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ, आपने अपनी जेब में हाथ डाला, ठीक है, अंदर देखा पुराना कोई टिश्यू पड़ा हुआ था, आपने देखा और हकारत से उसको फेंक दिया। इसे कहते हैं नबदा, लयुम्बदन। जिनको आदत है कि जहां भी जाए उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाए, बड़े उनको अजीम समझा जाए, लोग उठ के खड़े हो जाएं, वो इस आयत को भी गौर करें कि ये सिफात तो नहीं है कि जिसका नतीजा लयुम्बदन्ना है। लयुम्बदन्ना, ये जो नबदा की शक्ल बदली है ये ताकीदों की वजह से बदली। ला हतमन युम्बदन्ना, हतमन हतमन इसे फेंका जाएगा, एक हकीर चीज की तरह। किस में फेंका जाएगा? फिल हुतमा, हुतमा में। हा ता जिसे हम तोय कहते हैं, और मीम, इसका माना होता है किसी को पीस के रख देना, कुचल के रख देना, चिकना चूर करके रख देना। यानी ऐसी आग है कि जो अब वो आग है या आग के साथ कुछ और भी चीज़ें होंगी जिससे ज़र्ब लगेगी उसको, और वो कुचला भी जाएगा, जलेगा भी, कुचला भी जाएगा। खुदावंद आलम हम सबको इस अजाब से अपनी पनाह में रखे। लयुम्बदन्ना फिल हुतमा, माल तुझे हमेशा बाकी नहीं रखेगा, हरगिज़ नहीं, वो चुकना चिकना चूर कर देने वाली आग में ज़रूर फेंका जाएगा। पांच, वमा अदरा कमल हुतमा, ये हुतमा के लफ्ज़ से ऐसे ही ना आगे गुजर जाओ। तुम्हें किसने बताया है, आपको किस चीज़ ने बताया हुतमा क्या है, और आपको किस चीज़ ने बताया वो चिकना चूर कर देने वाली आग क्या है। छः, नारुल्लाहिल मूकदा, अल्लाह की भड़काई हुई आग है। नारुल्लाह, अल्लाह की आग, हर आग अल्लाह की आग है, हर साया अल्लाह का साया है, लेकिन ये खास तौर पर अल्लाह फरमा रहा है वो आग अल-मुकदा, भड़काई गई। आग तो जो भी जलाता है जाहिर है उसको भड़काता है जलाने के लिए, लेकिन जब अल्लाह ताला फरमा रहा हो कि ये अल्लाह ने भड़काई है, ये आग अल्लाह ने जलाई है और अल्लाह ने भड़काई है, तो फिर वमा अदरा कमल हुतमा, तुझे क्या चीज़ बताएगी कि वो हुतमा क्या है। तू तो दुनिया में थोड़े से गर्म टेम्परेचर पर भी सब्र नहीं कर सकता, दुनिया की आग पर कोई तुझे धकेले जलती हुई आग में तू नहीं जाना चाहेगा, जहन्नम की आग को तू कैसे बर्दाश्त करेगा। बस माल जमा कर कर के गिन गिन के खुश मत हो, लोगों को ताने ना दे, ताना वही देता है जो दूसरे को घटिया समझता है। लोगों की ऐब गोई मत कर, अल्लाह ने मना किया है, ना उसके सामने ना पुश्त पीछे, पुश्त के उसके पसे पुश्त। कुछ लोग जब गीबत करते हैं तो अपने आप को एक शैतानी जुमले से सेटिस्फाई कर लेते हैं, मुतमिन कर लेते हैं। क्या कहते हैं, मैं मुंह पे भी कर लेता हूँ, उसके मुंह पे ले आओ, मैं उसके मुंह पर भी कहूंगा। तो तुम्हें क्या तकलीफ है कि तुम अभी कर रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी अल्लाह ने लगाई है कि दूसरे लोगों में उसका ऐब बयान करो। तवज्जो फरमा रहे, ये शैतानी जुमला है, मैं ये बात उसके मुंह पर भी कर सकता हूँ। ये असल में ये बेईमान, चूंकि इसको पता होता है मैं गीबत करने लगूँ और सामने वालों के जहन में ये जाएगा, तो ये बेईमान अब अपने वो जो गीबत का इसको शैतानी प्रेशर आया हुआ है वो भी नहीं रोक पा रहा, अपनी उस शैतानी हरकत को भी नहीं रोक पा रहा, और उसको जस्टिफाई भी करना चाहता है, उसकी तावील भी करना चाहता है, तो अपने ऊपर अपने आप को दूसरों के सामने बहाना पेश करता है, कहता है मैं बड़ा बहादुर हूँ, मैं उसके मुंह पर भी कर लूँगा। तो मुंह पर भी कर लेगा तब भी तू गीबत कर रहा है, मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा है कुरान मजीद के बकौल। तवज्जो फरमा रहे, तो ये बाज़ गलत काम करने के लोगों ने शैतानी जस्टिफिकेशंस, शैतानी तावीलें बनाई होती हैं, कर लो, और अपने पास से उसका कोई दलील भी इंसान कर लेते। नारुल्लाहिल मुकदह, अल्लाह की भड़काई हुई आग है। सात, अल्लती, आग की सिफत बयान हो रही है, अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, वो कि जो तुलू करेगी यानी चढ़ जाएगी, कहाँ चढ़ जाएगी, दिलों पर, यानी न सिर्फ ये कि बदन जलेंगे दिल भी जलेंगे। अब यह दिल से क्या मुराद है, याद रखिए दिल से मुराद कुरान में ये दिल नहीं होता जो हमारे बदन में खून को पंप कर रहा होता है, इससे मुराद वो मरकज़ है इंसान के अंदर का, अब उसका नाम जो भी रख लें, जहाँ अकल रहती है, जहाँ इंफॉर्मेशन इत्तलाआत जमा होती हैं, जहाँ एनालाइज होती हैं और फिर इंसान वहीं पर डिसीजन लेता है, अकल होती है, जज्बात होते हैं, सब का मिक्सचर, यानी मेन सेंट्रल जगह। तो आयत क्या कह रही है कि वो जहाँ वो मरकज़ जहाँ से तू ये ताने तैयार करके बाहर निकालता था, जहाँ से ये ऐब गोई के इरादे करता था तू, जहाँ तू माल को जमा कर करके, जहाँ तेरे माल की मोहब्बत जहाँ बसा करती थी, वहाँ पर ये आग चढ़ेगी, वहाँ उस आरजुओं को, उस खराबियों के मरकज को, जिसमें तुझे बड़ी लज्जत का एहसास होता था ये काम करके, उस वहीं के जहाँ तुझे लज्जत महसूस होती थी, वहीं तुझे जलन महसूस होगी, और आम जलन नहीं, नारुल्लाहिल मुकदह, अल्लाह की भड़काई हुई आग की जलन, वहीं पे तुझे जलाएगी। इसका तसव्वुर, इन अल्फाज से तसव्वुर इंसान कर सकता है, जिसको बाहर से भी आग जला रही हो और उसके अंदर से भी, क्या होगी वो खुदा बंदे आलम बेहतर जानता है, लेकिन उसने बताया कि वो तुम्हारी सोचों की जगह को भी जलाएगी, जहां से तुम गलत अफकार और गलत सोचें बनाया करते थे। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, जो दिलों तक पहुंच जाएगी, तुलू करेगी, तत्तलिउ यानी चढ़ जाएगी उनके ऊपर, आठ, इन्नहा अलैहिम मुसदा, बेशक वो उन पर मुहित हो जाएगी, यानी हर तरफ से वो आग उनको घेरे में ले लेगी। आयत नंबर 9, फी अमदिन मुमद्ददा, लंबे लंबे तुलानी सतूनों में, आप तसव्वुर करें एक सतून, एक कैप्सूल टाइप का, कि उसके अंदर अजाब दिया जा रहा है, उससे निकलने का, उसके खुलने का कोई तरीका नहीं है, वो जलने वाला भी उसी कैप्सूल में है और जलाने वाली आग भी, हुतमा भी उसी कैप्सूल में है, क्या कैफियत हो सकती है। इंसान मरना चाहेगा फौरन ताकि तकलीफ ना हो, मरेगा नहीं, कुरान मजीद ने बयान किया मरेगा नहीं। अब आप तसव्वुर करें कि एक आग के सुतून में, एक ऐसा सुतून जिसके अंदर आग भरी हुई है, उसमें इंसान जल रहा है, और आग भी कोई मामूली आग नहीं है, उसमें जल रहा है और मौत भी नहीं आती, तकलीफ कम भी नहीं हो सकती, कोई नहीं चाहेगा हम में से। अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कुरान पढ़ने के आदाब में, कि जब ऐसी आयत पर, आयात पर पहुंचो जिसमें जहन्नम का जिक्र हो, अजाब का जिक्र हो, तो वहाँ पर रुक कर अल्लाह से पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह मांगो, उस अजाब से खुदा बंदे आलम महफूज रखे। सूरतुल हुमज़ा को हम यहाँ पे तमाम करते हैं, और इस दर्स को भी इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम ऐसे काम करने की तौफीक दे कि जो जन्नत में जाने का सबब है, उसकी रज़ा का सबब है, और ऐसे तमाम काम करने से परहेज़ करने की तौफीक दे कि जो हुतामा में जाने का सबब है, लोगों के ऐब बयान करना, लोगों को ताने देना, माल जमा करके खुश होना, उस पर तकब्बुर करना, दूसरों को घटिया समझना, परवरदिगार आलम इन सिफात से बचने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।